आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में 47,573 करोड़ रुपए से अधिक की 15 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कानपुर मेट्रो के 5 नए स्टेशनों का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से की मुलाकात। कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा एक ही पाली में आयोजित कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ वर्षा होने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में 47,573 करोड़ रुपए से अधिक की 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कानपुर के शुभम द्विवेदी ने भी पहलगाम हमले में जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि देश की बहनों और बेटियों का आक्रोश पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
हमारी बहनों बेटियों का आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुस कर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा।
प्रधानमंत्री ने आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनमें 8,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना, घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट की 3 इकाइयों का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिंदवा में 40 एमएलडी क्षमता वाले ट्रीटमेंट प्लांट, गौतमबुद्ध नगर में 220 और 132 केवी सब स्टेशन, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक सुधार और नगरीय सेवाओं से जुड़ी अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 2,120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि बिजली की समुचित आपूर्ति, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाएं प्रदेश के विकास को और गति देंगी।
हमारी सरकार यूपी के 150 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित कर रही है। यूपी पहले ही देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। यानी हाईवे, रेलवे और एयरवे यूपी अब हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम यूपी को औद्योगिक संभावनाओं का राज्य बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आत्मसम्मान के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहाँ नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहाँ के हजारों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को सलाम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुश्मन के खिलाफ जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वह मेड इन इंडिया की ताकत का एहसास कराता है।
भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, या प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है।
कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने आयुष्मान व्यय वंदना योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। शुभम की पत्नी ईशान्या ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आतंकी घटना का शिकार हुए लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है और ये लड़ाई जारी रहेगी।
उन्होंने पूरे परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त की है और बोला है कि इस दुखद घटना में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने पूछा इंसिडेंट से रिलेटेड कि बेटा वहाँ पे कैसे क्या हुआ था, तो मैंने जैसा जो था वो मैंने पहले भी आप सबको बताया, उन्हें भी वही बताया। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अभी भी लड़ाई जारी है और वो आगे भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा ये शुरुआत है, लड़ाई लंबी।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरुबच्चन सिंह सलारिया को याद कर रहे हैं।
1935 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में एक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। कैप्टन सलारिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भारतीय टुकड़ी के साथ दिसंबर 1961 में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। कांगो से बेल्जियम के लौट जाने के बाद से वहां गृह युद्ध छिड़ गया था। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया ने एक पलटन का नेतृत्व करते हुए एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के निकट एक स्थिति को सुदृढ़ किया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने दुश्मन के 40 लोगों को मार गिराया। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन सलारिया अंत तक लड़ते रहे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिया है कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी दो पालियों के स्थान पर अब एक ही पाली में आयोजित की जाए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक ही पाली में परीक्षा कराने की व्यवस्था करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज अयोध्या में महारानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री टम्टा ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और देश भर में आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त धार्मिक स्थलों को पुनर्स्थापित करने का काम किया था। आकाशवाणी लखनऊ के सहायक निदेशक संजय पांडे आज सेवानिवृत्त हो गए। श्री पांडे जून 1989 में बतौर प्रसारण निष्पादक आकाशवाणी से जुड़े थे। अपनी 36 वर्षों की सर्विस के दौरान उन्होंने खेल सहित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के कमेंट्रेटर के रूप में विशेष पहचान बनाई। श्री पांडे के साथ ही आकाशवाणी लखनऊ में बतौर सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी कार्यरत रंजना सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गईं। प्रदेश के कई जनपदों में आज रुक रुक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए भी राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ वर्षा होने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में 47,573 करोड़ रुपए से अधिक की 15 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कानपुर मेट्रो के 5 नए स्टेशनों का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से की मुलाकात। कहा अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा एक ही पाली में आयोजित कराने के दिए निर्देश और लखनऊ कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ वर्षा होने का जताया अनुमान इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा